आदांसः गणललिताश्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारे चैतन्य चरितामृत के 30वें दिन के सत्र में। हम अंत्यलीला में हैं और कल हमने अंत्यलीला का दूसरा अध्याय इसमें से चर्चा की थी, जिसका शीर्षक था महाप्रभु के द्वारा छोटे हरिदास को दंड। और उसमें सर्वप्रथम कविराज गोस्वामी महाप्रभु की कृपा किस प्रकार से इस धरातल पर फैली इसका वर्णन करते हैं। तो वह कहते हैं कि तीन प्रकार से महाप्रभु की कृपा इस धरातल पर फैलती है। सबसे पहला है साक्षात दर्शन, दूसरा होता है आवेश और तीसरा होता है आविर्भाव। तो साक्षात दर्शन हमने देखा कि किस प्रकार से जिन जिन भक्तों को उन्होंने अपना साक्षात दर्शन दिया वो है साक्षात दर्शन। और उस साक्षात दर्शन को लेने के लिए कई सारे किन्नर देवी देवता गंधर्व वो भी आते थे मनुष्य रूप लेके और महाप्रभु का साक्षात दर्शन पाके चले जाते थे और अपने आप को कृतार्थ मानते थे। दूसरा है आवेश, और हमने देखा किस प्रकार से एक बार नकुल ब्रह्मचारी के हृदय में महाप्रभु ने आवेश कर दिया था और वो प्रेम से मदमत्त हो गए थे और जो भी उन्हें देखता था वो भी प्रेम में मदमत्त होकर नाचता था। लेकिन शिवानंद सेन उनका विश्वास नहीं था कि नकुल में जो है वो आवेश हुआ है, और उसकी भी वृत्तांत हमने देखा कि किस प्रकार से वो दूर खड़े रहते हैं और नकुल ब्रह्मचारी स्वयं उन्हें बुलाते हैं कि आप आइए और आपका ये जो है वो चार अक्षरी गौर गोपाल मंत्र आपका है और वो जान जाते हैं। और इस प्रकार से जो है वो महाप्रभु का अगला हमने देखा तीसरा आविर्भाव। तो चार जगह है जहां पर महाप्रभु का आविर्भाव नित्य रूप से होता था, शचिर मंदिर है, नित्यानंद नर्तने, श्रीवास कीर्तने, राघव भवने। तो इन चार जगह पर महाप्रभु नित्य रूप से आविर्भूत हुआ करते थे। और हमने देखा कि नरसिम्हानंद ब्रह्मचारी इन्होंने भी आविर्भूत कराया था, और जब तीन जनों को उन्होंने भोग लगाया था, जगन्नाथ जी, चैतन्य महाप्रभु और उनके आराध्य नरसिम्ह देव, तो जगन्नाथ जी चैतन्य महाप्रभु वहां पर आविर्भूत हुए थे और सारा प्रसाद उन्होंने ग्रहण कर लिया था। और इसके पश्चात हमने देखा कि जो भगवान आचार्य है वो चैतन्य महाप्रभु को अपने यहाँ पे प्रसाद के लिए कई बार बुलाते हैं, और एक दिन उन्होंने जो है वो चैतन्य महाप्रभु के लिए प्रसाद के लिए जब बुलाया तब जो चावल थे वो उन्होंने छोटा हरिदास को लाने के लिए कहा था सीखी महिती इनकी बहन माधवी देवी से। चैतन्य महाप्रभु के घनिष्ठ भक्तों में 3.5 भक्तों का वर्णन आता है, एक है रामानंद राय, दूसरे है स्वरूप दामोदर, तीसरे है शिकी माहिती, और जो 3.5 नंबर पे है वो है शिकी माहिती की भगिनी माधवी देवी। तो उनसे मांगकर लाते चैतन्य महाप्रभु पूछते किससे लाए है चावल, और जब बताया जाता है छोटा हरिदास गया था मांगने के लिए तब जाके महाप्रभु उसके ऊपर क्रोध जताते हैं और उसे अपने संग से निष्कासित कर देते हैं। सारे भक्त विनती करते हैं महाप्रभु से, स्वरूप दामोदर विनती करते हैं, परमानंदपुरी आके विनती करते हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु किसी के नहीं सुनते। और एक दिन आता है एक साल के पश्चात जब महाप्रभु की कृपा का कोई लवलेश नहीं दिखता है, छोटा हरिदास प्रयाग में जाके अपना देह को त्याग कर देता है, और इस प्रकार से जब वार्ता नवदीप पहुंच जाती है और वहां से फिर शिवास आदि सब भक्तगण मिलने के लिए आते हैं महाप्रभु से पुरी में, तब महाप्रभु उसका अनुमोदन देते हैं। और इस प्रकार से हमने देखा कि सात शिक्षाएं सरस्वती ठाकुर इन्होंने दी है और श्रील प्रभुपाद जी ने अपने किताबों में भी वो दे के रखी है इस घटना से। और इसके पश्चात हमने एक छोटा सा वृत्तांत और देखा था अध्याय तीन से कि दामोदर जो थे महाप्रभु अपनी कृपा एक बालक के ऊपर ज्यादा दिखा रहे थे, लेकिन वो बालक एक विधवा का पुत्र था और ताकि लोगों की कानाफूसी के लिए कुछ विषय न मिले, चर्चा न करे, इसलिए वो महाप्रभु को भी डांट दिए थे। और इस प्रकार से महाप्रभु कहें कि मेरे अंतरंग पार्षदों में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई है तो वह है दामोदर, जो मुझे भी सुधार सकता है। इस प्रकार से आगे चल के महाप्रभु ने उन्हें नवद्वीप भेज दिया था और अपनी माता के साथ रहने के लिए कहा था, और नवद्वीप में सारे भक्त अभी कोई मर्यादा उल्लंघन नहीं करता था क्योंकि मर्यादा स्थापन करने के लिए दामोदर और उनका वाक्य दंड वहां पर उपस्थित था। तो इस प्रकार से तीसरे अध्याय के कुछ श्लोक हम लोग चर्चा कर चुके हैं ये दामोदर के वृत्तांत से। अभी वास्तव में इस अध्याय का शीर्षक है हरिदास ठाकुर इनकी महिमा, और वो हम लोग अभी प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। चैतन्य महाप्रभु उपलभोग जगन्नाथपुरी का वहां का दर्शन करके प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर इनकी कुटिया में हर रोज नित्य क्रम उनका यह था कि वो आया करते थे, हरिदास ठाकुर से मिलते थे, कुछ समय कृष्ण कथा करके मध्याह्न के समय अपने कार्यों के लिए निकल पड़ते थे। तो एक दिन महाप्रभु ऐसे ही आए और हरिदास ठाकुर से कुछ प्रश्न पूछने लगे। एक दिन प्रभु हरि दासेरे मिलीला तहा लिया गोष्ठी करी तहारे पूछिला। क्या पूछते महाप्रभु एक दिन? हरिदास कली काले यवन अपार गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार। इस कलयुग में कई सारे यवन लोग है जो गायों को मारते हैं, ब्राह्मणों का जो है वो अवमान करते हैं, इन सब लोगों का इस महान दुराचार से उद्धार कैसे हो सकता है? यहां सबार कौन मते हईबे निस्तार तहार हेतु ना देखिए यही दुख अपार। मैं दुखित हो रहा हूं, चिंतित हो रहा हूं कि इन सब लोगों का उद्धार कैसे हो सकता है। हरिदास ठाकुर कहते हैं, महाप्रभु आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी कृपा से सारे जगत का तो उद्धार होने ही वाला है, लेकिन खास करके जो यवन लोग है उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा। यवन सकलेर मुक्ति होबे अनायासे हा राम बलि कहे नामा भासे। ये जो यवन लोग है ये हा राम इस प्रकार से जो वो हमेशा चिल्लाते रहते हैं, और ये तो भगवत प्रेमवश भगवान के भक्त भी हे राम ऐसा जो हमेशा पुकारते रहते हैं। तो यवन का जो भाग्य ही उदित हो जाएगा यदि वो ऐसा हमेशा करते रहेंगे। तो नामाभास में भी कोई यदि भगवान का नाम संकेत रूप से भी ले लेता है तो भी उसका भाग्य उदित होता है, और इसके लिए हमारे पास शास्त्र से प्रमाण भी है। अजा मिला पुत्र बोलाए बलिनारायण विष्णुदूत आसी छाड़ाए तहार बंधन। अजामिल अपने पुत्र के लिए पुकारा था जिसका नाम था नारायण, लेकिन फिर भी वहां पर विष्णु दूत उपस्थित हुए और उन्होंने अजामिल को बंधन से मुक्त करा दिया। जो राम शब्द है इसमें दो अक्षर है रा और म, और ये जो लव हा कहते हैं ये संबोधन का ही प्रतीक हे के रूप में व्याकरण में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हे राम ही ये लोग बोल रहे हैं। हालांकि आप किसी भी संकेत से या किसी भी कारणवश भगवान का नाम ले तो वो अपनी आध्यात्मिक शक्ति कभी भी नहीं गंवाता है, और वो आध्यात्मिक बल दिखाई देगा और उनको मुक्त करा ही देगा। नामाभास होते हो सर्व पाप क्षय, नामाभास से ही सारे पापों से मुक्ति किसी व्यक्ति को मिल सकती है। और श्रीमद भागवत के छठे स्कंद के दूसरे अध्याय का श्लोक हरिदास ठाकुर उद्धृत करते हुए कहते हैं, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। म्रियमाणो हरेर नाम, अजामिल ने भगवान का नाम मरते समय लिया, म्रियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्र उपचारितम, और वो भगवान को पुकारने के लिए नहीं लिया, अपने पुत्र को पुकार रहे थे। अजामिलोपि अगाध धाम, अजामिल जैसा पापी व्यक्ति, इतने पाप उसने जीवन भर किए थे, वो व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। किम उत श्रद्धया गुणन, यदि श्रद्धा पूर्वक कोई इसे करे तो उसके बारे में क्या कहना। नामाभासे मुक्ति है सर्वशास्त्रे देखी श्री भागवते ताते अजामिला साक्षी। सारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि नामाभास से भी मुक्ति मिल सकती है, और इसका उदाहरण साक्षी कौन है, श्रीमद भागवत का अजामिल का वृत्तांत, ये उसके लिए साक्षी है। जब चैतन्य महाप्रभु सुन लेते हरिदास ठाकुर से यह जवाब, महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं और उनके हृदय में प्रसन्नता छा जाती है। और इसके पश्चात महाप्रभु और एक प्रश्न पूछते हैं, ये तो यवनों का उद्धार हो गया, देखिए महाप्रभु की चिंता किन किन के लिए बनी है। पृथ्वी ते बहु जीव स्थावर जंगम इहा सबार की प्रकारे होइबे मोचन, कि इस जगत में कितने सारे स्थावर और जंगम वस्तुएं हैं जिनका उद्धार कैसे हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर पुनः कहते हैं कि आपकी कृपा से महाप्रभु सबका उद्धार इस संसार में होने ही वाला है। तुम्ही ये करिया छ ए उच्च संकीर्तन स्थावर जंगमेर से होयत श्रवण, आप जो अपना उच्च हरिनाम संकीर्तन करते हैं, आपके सारे भक्त जब हाथ उठा के कीर्तन की ध्वनि करते हैं, तो क्या होता है, जो चलायमान वस्तुएं हैं वो सब लोग सुनते हैं और उनका उद्धार हो जाता है, और जो अचल वस्तुएं हैं मानो वृक्ष है, लताएं हैं, पेड़ पौधे आदि, ये सब जो उनसे भी ये ध्वनि टकराती है, और जो प्रतिध्वनि होती है वो प्रतिध्वनि नहीं होती है, ये उन वस्तुओं के द्वारा किया गया कीर्तन होता है और उनका भी जो है वो उद्धार जरूर होता है। ये इच्छे कैला झरी खंडे वृंदावन आई थे बलभद्र भट्टाचार्य कही अच्छे नामाते, आप जब झारीखंड जंगल से होते वृंदावन जा रहे थे मध्य लीला अध्याय 16, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने हमें सब कुछ बता दिया है। अध्याय 17 मध्य लीला का, जिसमें झारीखंड जंगल से महाप्रभु गए थे, तो बलभद्र भट्टाचार्य ने तो सबको बताया ही था। तो हरिदास ठाकुर कहते हमें पता है, जब आप बलभद्र भट्टाचार्य को लेके झारीखंड जंगल से वृंदावन गए थे, तब आपने कितने सारे पशु पक्षी हिरण व्याघ्र इन सबको नचाया था कीर्तन करते वक्त, वो सबको पता है, इसलिए जो है वो संकीर्तन से सारे चराचर का भवबंधन छूटने वाला है। फिर महाप्रभु पूछते हैं, अरे सारे चराचर का सबका भवबंधन छूट जाएगा तो इस धरातल पे कोई बचेगा कि नहीं, या सब लोग भगवत धाम में जाएगा, यहाँ पे क्या होगा। प्रभु कहे सब जीव मुक्ति अबे पाबे एक ब्रह्मांड तबे जीव शून्य होबे, सारे जीव शून्य बन जाएंगे, यहाँ पे कोई बचेगा ही नहीं, सब लोग भगवत धाम चले जाएंगे, सबका भवबंधन छूट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि वो चिंता आप मत कीजिए, ऐसे कोई बद्ध जीव हमेशा रहेंगे जो भगवान की अवज्ञा करेंगे और इस धरातल को पुनः भर देंगे। एक ब्रह्मांड उद्धार होकर चला जाएगा, उसमें भगवान को कोई क्षति नहीं है, लेकिन कई बद्ध जीव आते ही रहते हैं। और उदाहरण देते हैं, जब प्रभु रामचंद्र इस धरातल पर थे तो सारे लोगों को अपने साथ अपने आध्यात्मिक अयोध्या धाम में लेके गए, लेकिन अभी भी अयोध्या में तो लोग रह रहे हैं ना। पूर्वे यन रघुनाथ सब अयोध्या लैया वैकुंठे के गेला अन्य जीव अयोध्या भरिया, इस प्रकार से अन्य जीव अयोध्या में आ गए। और उसी प्रकार से भगवान कृष्ण जब वृंदावन में लीला किए थे उस समय भी सारे बद्ध जीवों का उद्धार उन्होंने किया था, और उसी प्रकार से आप अभी इस धरातल पर है, सारे बद्ध जीवों का उद्धार आपके द्वारा होने ही वाला है। तुम्हारा ये लीला महा अमृते रसिंधु मोर मने गोचर न है तार एक बिंदु, आपकी लीला तो अमृत सिंधु के समान है और हम उसमें से एक बिंदु भी जो है वो ठीक से नहीं समझ सकते। जब महाप्रभु ने यह सुना, महाप्रभु अचंभित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, और फिर हरिदास को उन्होंने आलिंगन दिया, और महाप्रभु मन में ही मन सोचने लगे कि हरिदास को कैसे पता चल गया कि मैं इस धरातल पर सबका उद्धार करने के लिए आया हुआ हूं। ईश्वर स्वभाव ऐश्वर्य चाहे आच्छादिते भक्त ठाई लुकाईते नारे हयत विदिते, भगवान का स्वभाव है कि अपना ऐश्वर्य हमेशा छिपा के रखना चाहते है, लेकिन भक्त का यह स्वभाव है कि वो भगवान के ऐश्वर्यों को और फैलाना चाहता है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होकर वहां के निकल जाते हैं और अपने निजी भक्तों को मिलते हैं, और हरिदास ठाकुर का गुणगान इस प्रकार से करते हैं मानो उनके 100 मुख है, 100 मुखों से मानो वो हरिदास ठाकुर का गुणगान कर रहे हैं। हरिदासेर गुणगण असंख्य अपार केह केन अंश वर्णे नहीं पाय यार नहीं पाय पार, हरिदास ठाकुर इनकी महिमा, इनके गुण जो है वो अपार है। इतने सारे गुण है हरिदास में, मैं बद्धजीव कितने गुणों को उनके वर्णन कर सकता हूं। हालांकि वृंदावनदास ठाकुर, इन्होंने चैतन्य भागवत में हरिदास ठाकुर की महिमा का गान प्रचुर मात्रा में किया हुआ है, किंतु फिर भी कुछ शेष लीलाएं उनकी बची है जो वृंदावनदास ठाकुर इन्होंने स्पर्श नहीं किया है। अपने स्वयं की पवित्रता के लिए मैं आपको सुनाऊंगा, हे श्रोतागण आप उसे सुनिए। और एक वृत्तांत सुनाते हैं अभी हरिदास ठाकुर जी का, तीन वृत्तांत वो सुनाने वाले हैं। सबसे पहला वृत्तांत हम लोग प्रारंभ करते हैं। हरिदास ठाकुर जी ने जब अपने गृह का त्याग कर दिया था, तब हरिदास ठाकुर बेनापोल, जो आज के बांग्लादेश प्रांत में पाया जाता है, बेनापोल में हरिदास ठाकुर एक निर्जन जगह पर वन में अपनी एक लिए एक कुटिया बनाए थे, और उस कुटिया में तुलसी आरोपित की थी। हर दिन वो तुलसी की सेवा किया करते थे और 300,000 भगवान के नाम लिया करते थे। निर्जन वने कुटीर करी तुलसी सेवन, रात्रि दिने 300,000 नाम संकीर्तन। दिन रात इस प्रकार से हरे कृष्ण का वो कीर्तन किया करते थे। कई लोग आजू बाजू के उनको मिलने के लिए आते थे, उनको प्रणाम करते थे, और हरिदास ठाकुर जो भी कुछ भिक्षा में मिल जाता था उससे अपना निर्वाह कर लेते थे। उनकी ख्याति बहुत फैल गई कि ऐसे ऐसे एक बाबा रहते हैं, दिन रात निरंतर जप करते रहते हैं। उसी समय वहां पर एक जमींदार था जिसका नाम था रामचंद्र खान। वो बिल्कुल नास्तिक और वैष्णव द्वेषी व्यक्ति था। कई सारे उपाय वो सोचता था कि मैं कुछ करूं ताकि इसकी प्रशंसा लोग न करें। कई सारे उपाय को आयोजन किया करता था, लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर में बिल्कुल दोष नहीं ढूंढ पाया। एक दिन उसने क्या किया, सारे वैश्याओं को एकत्रित किया और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि यह हरिदास ठाकुर बहुत वैराग्य है और इसकी ख्याति बहुत जगह फैल गई है, तो हमें इसकी पवित्रता का भंग करना है। कैसे करना है आप सबके सामने यह प्रश्न मैं रखता हूं। तो उन सारे वेश्याओं में एक वेश्या थी, परम सुंदर थी, वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेती हैं। वेश्यागण मध्य एक सुंदर युवती से कहे तीन दिने हरिबतारुमती। वो कहती है रामचंद्र खान से, मुझे केवल 3 दिन दे दो, मैं इसकी पवित्रता को भंग करके रहूंगी। तो रामचंद्र खान कहता है ठीक है, आप मेरे कुछ सेवक लेके जाओ आज रात को, और आप जैसे ही संग करेंगे हमारे सैनिक रंगे हाथ पकड़ लेंगे और ठाकुर को यहां पे लेके आएंगे और दंड देंगे। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आज मैं अकेली जाती हूं। उसको विश्वास था, आत्मविश्वास काफी गहरा था उसका, तो उसे विश्वास था कि मैं तो आज संग कर ही लूंगी हरिदास का। और वो कहे कि आज मुझे संग करने दो, कल दूसरे दिन मैं पुनः जब जाऊंगी तब आपके सैनिकों को मेरे साथ लेके जाऊंगी। तो रामचंद्र खान कहते ठीक है जैसा आप सोचे। तो फिर उस दिन रात के समय वह वेश्या बिल्कुल सज ढज कर हरिदास ठाकुर के कुटिया में जाती है। वहां पर जो तुलसी थी वहां पर उस तुलसी को नमस्कार करती है, हरिदास ठाकुर को नमस्कार करती है, और जो कुटिया जिसमें हरिदास ठाकुर बैठे थे उस कुटिया के दरवाजे के दहली पर अपना अंग प्रदर्शित करते हुए वहां पर बैठ जाती है और अपने सुमधुर वाणी से हरिदास ठाकुर से कहती है, ठाकुर तुम्ही परम सुंदर प्रथम यौवन, तोमा देखी कोन नारी धरिते पारे मन। ठाकुर आप कितने परम यौवन परम सुंदर हो, और आपको देख के कौन सी नारी होगी जिसका मन आपकी ओर आकर्षित नहीं होगा, कितने आप परम सुंदर हो। तुम्हारा संगम लागी लुब्ध मोर मन, तुम्हारा ना पाइले प्राण नायाय धारण। आपका संग की अभिलाषा से लालाहित होकर मैं यहाँ पे आई हूं, और यदि आपका संग नहीं मिलता है मुझे तो मैं मेरे प्राणों को भी धारण नहीं कर पाऊंगी। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है। हरिदास कहे तोमा करीमु अंगीकार, संख्या नाम समाप्ति यावत ना होयो आमार। देखो मैं तुम्हारा संग जरूर करूंगा, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा, लेकिन क्या है ना कि मैंने एक व्रत लेके रखा है, कुछ संख्या पूर्वक नाम मुझे हर दिन लेना होता है, और जब तक वो संख्या पूरी नहीं हो जाती मैं दूसरा कार्य नहीं करता हूं। तो मुझे ये नाम का जप करने दीजिए संख्या पूर्वक, और संख्या जैसे ही पूरी हो जाएगी आपकी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। लेकिन तब तक तुम क्या करोगी? तब तक तुम यहीं पे बैठे रहो। तावत तुम्ही वशिष्यु न नाम संकीर्तन नाम समाप्ति है ले करिमु ये तोमार मन। तब तक आप यहीं पर बैठे रहो, मैं जो कीर्तन कर रहा हूं उसको सुनो, और जब समाप्त हो जाएगा तब मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। एत सुनी सेई वैश्या वसिया रहिला कीर्तन करे हरिदास प्रातः काल हैला। इस प्रकार से वो वैश्या वहां पर बैठ गई, सुन रही थी हरिदास ठाकुर, उनका तो कीर्तन चलते ही रह रहा था, और ऐसे चलते 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 प्रातः काल हो गया, और जैसे ही प्रातः काल हो जाता है वैश्या वहां से उठ के चली जाती है। रामचंद्र खान से मिलती है और सारा वृत्तांत सुनाती है। बोले बहुत मुश्किल है लेकिन फिर भी मैंने चुनौती ली है तो मैं पुनः जाऊंगी। हरिदास ठाकुर ने कहा है कि उनका नाम समाप्त हो जाएगा तब वो मेरी इच्छा पूरी करेंगे, और आज शायद ऐसा हो सकता है। तो उस रात को पुनः वह वैश्या हरिदास ठाकुर के कुटीर में जाती है, और एक गलती करती है। वो क्या गलती करती है? वो सबसे पहले तुलसी को प्रणाम करती है। तुलसी को प्रणाम करने के पश्चात हरिदास ठाकुर को प्रणाम करती है, और प्रणाम करके पुनः अपना अंग प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में बैठ जाती है। हरिदास ठाकुर इतने दुखी और सदया भाव से उसे कहते हैं, काली दुख पाइला अपराध नारई बा मोर अवश्य करिमु आमी तोमाय अंगीकार। मुझे क्षमा करना, मेरा अपराध मत मानना, कल बहुत दुख तुम्हें सहना हुआ, सारी रात भर तुम जगती रही, मेरा अपराध कृपया मत मानना। देखिए हरिदास ठाकुर वो कहते हैं कि अपराध मत मानना मेरा, और आज मैं तो जरूर तुम्हारा अंगीकार कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम जो है वो आप नाम संकीर्तन सुनो, बैठी रहो। तुलसी रे तांके वैश्या नमस्कार करी द्वारे वसी नाम सुने बले हरी हरी। तुलसी को प्रणाम करके हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके वैश्या दरवाजे में बैठ जाती है, और जब वो बैठ जाती है अभी सुन रही है, पहली रात को उसने केवल सुना, आज दूसरी रात वहां पर वो है, करने के लिए कुछ नहीं है, हरिदास ठाकुर का नाम कीर्तन चल रहा है और वो सुन रही है, और सुनते सुनते बीच बीच में सुने बले हरी हरी, बीच बीच में वो भी थोड़ा कृष्ण का नाम बोल रही है। रात समाप्त हो जाती है, दूसरे दिन पुनः प्रातःकाल हो जाता है। वैश्या वहां से उठकर जो है वो निकलने ही वाली होती है, लेकिन वो बहुत व्याकुल हो जाती है कि ये हरिदास ठाकुर ऐसा क्या कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर उसे कहते हैं कि देखो मैंने एक महीने में 1 करोड़ नाम लेने का व्रत लिया हुआ है, और मैंने अपने आप को लॉकडाउन करके रखा है इस गुफा में, तो 1 महीने में मैं 1 करोड़ नाम लेने वाला हूं, और जब तक ये समाप्त नहीं कर लेता तब तक मैं दूसरा कुछ कार्य नहीं कर सकता, और समाप्त होने ही वाला है, अभी लॉकडाउन उठने ही वाला है, तो मेरा ये समाप्त होने वाला है, आज समाप्त हो जाएगा, आज आप आ जाना और आपकी जो इच्छा है वो मैं जरूर पूरी करूंगी। तो ऐसा सुनकर वो ऐसा वहां से चली जाती है। पुनः रामचंद्र खान से मिलती है और कहती है कि हरिदास ठाकुर ने मुझे वचन दिया है और उन वचन का जरूर वो पालन करेंगे, आज मैं पुनः जाऊंगी, आप चिंता मत करना। तीसरी रात वो वैश्या पुनः आके हरिदास ठाकुर के सामने बैठ जाती है, और कीर्तन करिते ऐछे रात्रि शेष हैला ठाकुरे रसने वैश्यार मन फिर गेला। उस प्रकार से उस दिन भी उस रात को भी वैश्या हरिदास ठाकुर का कीर्तन सुन रही थी, वो खुद भी बोल रही थी, और उनके संग से उनके शुद्ध नाम का इतना प्रभाव था कि हरिदास ठाकुर के उस नाम को सुनकर ही उस वैश्या का मन में परिवर्तन आ गया था। साधु संग सर्वशास्त्रे कोहे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। लव मात्र भी यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग कर लेता है तो उसके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का वो तो 3 रात तक संग कर रही थी, शुद्ध नाम को सुन रही थी, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, और वो दंडवत करती है हरिदास ठाकुर को और सारा वृत्तांत सुनाती है कि किस प्रकार से उस रामचंद्र खान उस नालायक व्यक्ति ने मुझे आपकी पवित्रता को भंग करने के लिए भेजा था। हरिदास ठाकुर कहते हैं, मैं जानता हूं कि वो रामचंद्र खान उसी ने आपको भेजा होगा मेरे व्रत को भंग करने के लिए, लेकिन मैं उससे दुख नहीं हूं, चिंतित नहीं हूं। मुझे तो चिंता आपकी थी। पहले दिन ही जब मुझे समाचार मुझे समझ में आ गया कि आप इस प्रकार से आ रही हो, तो मैं पहले दिन ही जान गया कि ये रामचंद्र खान की ही चाल होगी। मैं उसी रात को यहां से निकल जा सकता था, लेकिन मैं 3 दिन केवल आपके लिए यहां पर रुका हूं और आपका उद्धार करने के लिए। वह वैश्य हरिदास ठाकुर के चरणों में दंडवत प्रणाम कर देती है और कहती है कि मैं इतना पाप किया हुआ है मेरे जीवन काल में, मेरा उद्धार कैसे हो सकता है। हरिदास ठाकुर उसे कहते हैं कि आप एक कार्य कीजिए, आप घर जाइए, यहां से जितना सारा जो कुकार्य करके आपने धन अर्जित किया हुआ है, सारे धन को आप ब्राह्मणों को दान दीजिए, उनमें ही इसे पचाने की शक्ति है, दान दीजिए और निरंतर आप कृष्ण का नाम लेने के लिए इस कुटिया में आप आ जाइए। और एक उपदेश बहुत सुंदर उस वेश्या को हरिदास ठाकुर देते हैं, जिसका पालन यदि हम भी हमारे जीवन में करेंगे तो हमारा भी उद्धार अवश्य हो सकता है। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। ये दो कार्य आप सदैव करते रहना, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, और आप तुलसी की सेवा अवश्य करते रहना। तो इसलिए हमारे मंदिर में भी जो कार्यक्रम होता है, श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से हमें सुबह का कार्यक्रम दिया हुआ है, जिसमें हम लोग नित्य रूप से तुलसी पूजा गान करते हैं, तुलसी की महिमा गान करते हैं, तुलसी को जल अर्पण करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप हर रोज हम लोग करते हैं। निरंतर नाम लो कर तुलसी सेवन, अचिरात पाबे तबे कृष्णेर चरण। आप बहुत शीघ्र ही कृष्ण के चरणों में प्राप्ति हो जाओगे, कृष्ण के चरणों की प्राप्ति आपको बहुत शीघ्र हो जाएगी। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उसे उपदेश दे के वहां से चले जाते हैं। वो वेश्या अपने घर जाती है, सारा धन ब्राह्मणों में बांट देती है और उस कुटिया में आ जाती है। और किस प्रकार से आती है, अभी वो अपना सुंदर रूप सज ढसकर नहीं आती है, हरिदास ठाकुर ने नहीं कहा था, फिर भी एक कदम आगे जाके वो आज्ञा का पालन करती है। माथा मुड़ी एक वस्त्र रहिला सेई घोरे, रात्रि दिने 3 लक्ष नाम ग्रहण करे। वो भी अभी क्या, अपना सर मुंडवा कर, स्त्री के लिए बाल उसकी सुशोभिता का लक्षण होता है, उसने अपने बाल मुंडवा दिए और एक वस्त्र परिधान करके उसी कुटिया में और हरिदास ठाकुर के पद चिन्हों का अनुगमन करते हुए 3 लाख नाम वो भी अभी दिन रात किया करती थी। और क्या किया करती थी, बहुत सुंदर। तुलसी सेवन करे चरवण उपवास, इंद्रिय दमन हैल प्रेमेर प्रकाश। प्रेमेर प्रकाश, भगवत प्रेम की उसे प्राप्ति हो गई। कविराज गोस्वामी कहते हैं क्या क्या उसने किया, तुलसी सेवन करे, वो नित्य रूप से तुलसी की सेवा किया करती थी और चरवण, जो भी कुछ भिक्षा में कुछ मिल जाता था उसका खा लेती थी, कभी उपवास कर देती थी और इंद्रिय दमन किया उन्होंने, इंद्रिय दमन किया और इस प्रकार से होइला प्रेमेर प्रकाश, उसे भगवत प्रेम की प्राप्ति उसी जीवन काल में हो गई। इतनी प्रसिद्ध हो गई वो, अभी प्रसिद्ध वैष्णवी हैला परमा महांती, बड़ा बड़ा वैष्णव तार दर्शनेते यांती। इतनी बड़ी महांती हो गई अभी परम वैष्णवी कि बड़े बड़े वैष्णव उसके दर्शन के लिए वहां पर आया करते थे। इस प्रकार से वो जो वैष्णवी थी, हरिदास ठाकुर के संग में आने के कारण वो बहुत महान वैष्णवी हो गई, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया और सारे लोगों में उसकी ख्याति पहुंच जाती है। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे और हरिदास ठाकुर की महिमा उस वृत्तांत से और बढ़ गई। और क्या हुआ उसका, रामचंद्र खान जिसने तो एक प्रकार से हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध किया था, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं और उसका सारा बैकग्राउंड सुनाते हैं। ये जो रामचंद्र खान था, ये बहुत बड़ा वैष्णव अपराधी था, हिंदू धर्म का निंदा किया करता था, आसुरी प्रवृत्ति का था, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध का बीज उसने बोया था और धर्म की वो हमेशा निंदा किया करता था। एक दिन की बात है जब नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बंगाल में आए थे महाप्रभु की आज्ञा लेकर, और वो गांव गांव में घूमते थे। किस कारण घूमते थे? प्रेम प्रचारण आर पाषंड दलन दुई कार्य अवधुत करण भ्रमण, इन दो कार्यों के लिए अवधुत नित्यानंद प्रभु हमेशा घुमा करते थे। प्रेम प्रचारण और पाषंड दलन, पाषंडियों को दंड देने के लिए और भगवत प्रेम का प्रचार करने के लिए नित्य रूप से भ्रमण किया करते थे। और घूमते घूमते ऐसे ही एक दिन नित्यानंद प्रभु इस रामचंद्र खान के यहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं और उसके घर के बाहर जो दुर्गा मंडप था वहां पर अपना डेरा डाल के बैठ जाते हैं। और जहां जहां नित्यानंद प्रभु जाया करते थे उनके साथ कई सारे लोग वहां पर भीड़ किया करते थे उनके दर्शन के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए। तो सारे लोग वहां पर आ गए, उस मंडप में बैठ गए, तो रामचंद्र खान ने अपना एक सेवक भेजा और उसके साथ एक संदेशा भेज दिया था नित्यानंद प्रभु के लिए। तो नित्यानंद प्रभु के पास वो सेवक आया और सेवक ने कहा कि रामचंद्र खान ने मुझे भेजा है और आपके लिए संदेश है कि आप यहां पर मत रुकिए, आपके साथ इतने लोग हैं, आपके लिए यह स्थान अपर्याप्त है, अनुचित है, आप किसी ग्वाले के घर पे जाइए और वहां रुकिए। नित्यानंद प्रभु क्रुद्ध हो जाते और कहते हैं कि जी हाँ, यह स्थान मेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि यहां पर जो है वो गोमांस खाया जाता है और उन्हीं लोगों के लिए स्थान ठीक है। और वहां से क्रुद्ध होकर चले जाते हैं और उस गांव में भी नहीं रुकते, दूर कई गांव में चले जाते हैं। रामचंद्र खान, उसे लगता है नित्यानंद प्रभु यहां पर बैठे थे तो वो स्थान अपवित्र हो गया है, उसने अपने सेवक को आज्ञा दिया जहां जहां पर नित्यानंद प्रभु के चरण पड़े है, जहां वो बैठे थे, वो सारा उसको गड्ढा करो, वो मिट्टी निकालो, मिट्टी फेंक दो और थोड़ा गोबर और जल से उसे सिंचन करके उसे पवित्र कर दो। इस प्रकार से उस व्यक्ति ने फिर नित्यानंद प्रभु का भी एक दृष्टिकोण से अपराध किया था। ये जो रामचंद्र खान था, ये जो है वो जमींदार तो था लेकिन बड़े सरकार के यहाँ पे उसे कर चुकता करना पड़ता था। तो लोगों से कर लेना और शासन में उसे जमा करना, लेकिन वो पूरी मात्रा में नहीं देता था, कुछ हद तक चोरी करके अपने पास भी रखता था। एक दिन शासक का एक बड़ा मंत्री वहां पर आता है और मंत्री रामचंद्र खान को डांटने लगता है और पीटने लगता है, और जोर से पिटाई की रामचंद्र खान की, और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उन सबको बंदी बना दिया, सारे गांव को लूटा और 3 दिन तक उसी दुर्गा मंडप में बैठा, 3 दिन गायों को काटा और उनका मांस वहां पर पका के उसने खाया। तो इस प्रकार से ये निर्दयी व्यक्ति वहां पर आया था और सारा गांव वहां पर उजाड़ हो जाता है। रामचंद्र खान का पदवी भी छीन लिया गया, उसकी सारी संपत्ति छीन ली गई और भिखारी बन के उसे उस गांव में छोड़ दिया गया और पत्नी और बच्चों को लेके बंदी बना के वो मंत्री चला गया। तो इस प्रकार से कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महान तेरा अपराध ये देश ग्रामे होय, एक जनार दोषे सब देश उजाड़े। कि महान व्यक्ति का अपराध यदि ऐसे हो जाता है तो एक व्यक्ति के कारण सारा गांव जो है वो उसे दंड भुगतना पड़ता है। इस प्रकार से जो अपराध उसने हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के प्रति किया था, उसका भली भांति और अच्छी मात्रा में रामचंद्र खान को दंड चुकाना पड़ा। और कविराज गोस्वामी कहते हैं दूसरा वृत्तांत, हरिदास ठाकुर अभी चांदपुर नाम के एक गांव में जाते हैं घूमते घूमते। सप्तग्राम चांदपुर से बिल्कुल नजदीक है। सप्तग्राम में 2 मुजुमदार रहा करते थे, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार, हमने सुना हुआ है। गोवर्धन मुजुमदार के पुत्र कौन थे? रघुनाथ, जो आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी बनेंगे। तो ये गोवर्धन मुजुमदार और जो हिरण्य मुजुमदार है, उनके एक आचार्य थे, कुलपति थे, जिनका नाम था बलराम आचार्य। तो बलराम आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए चांदपुर में एक रहने के लिए कुटिया बना दी थी अच्छे से, और वो कुटिया में रहते थे और प्रसाद के लिए बलराम आचार्य इनके घर जाया करते थे। और जो गोवर्धन मुजुमदार के जो पुत्र थे रघुनाथ, वो अभी छोटे बालक थे, पढ़ाई कर रहे थे, वो बीच बीच में इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए जाया करते थे और उनसे कृपा लिया करते थे। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की कृपा रघुनाथ के ऊपर हुई और बाद में चल के महाप्रभु की कृपा भी उन्हें मिली और वो आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी जो कि हमारे संप्रदाय के प्रयोजन आचार्य बने हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि वैष्णव की कृपा हमारे ऊपर नहीं है तो भगवान की कृपा मिलना असंभव है। तो हरिदास ठाकुर की कृपा सर्वप्रथम इनके ऊपर हुई थी, हरिदास ठाकुर की कृपा इस प्रकार से रघुनाथ के ऊपर हुई थी और रघुनाथ फिर आगे चल के रघुनाथ दास गोस्वामी बनते हैं। तो एक दिन ये बलराम आचार्य हरिदास जी से विनती करते हैं कि आप हमारे साथ एक सभा में चलेंगे। पूछते कौन सी सभा, तो बताते हैं कि ये जो हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार है वो तो वैष्णव नहीं थे, भक्त नहीं थे, लेकिन वैष्णव के प्रति काफी आदर था, उनकी सेवा किया करते थे और इस प्रकार से वो एक सभा का आयोजन किया करते थे जहां पे थोड़ी कृष्ण कथा और थोड़ी विद्वत चर्चा हुआ करती थी। तो कई सारे विद्वान वहां पर आया करते थे और चर्चा चलती थी। तो वो एक दिन हरिदास ठाकुर को वहां पर लेके जाते हैं और जब तो फिर हिरण्य मुजुमदार गोवर्धन मुजुमदार उनका स्वभाव ही था कि वो वैष्णव का आदर आतिथ्य करने में बहुत प्रवीण थे और इस प्रकार से वो हरिदास ठाकुर को बहुत अच्छे से वहां पे स्वागत करते हैं, उनको बैठने के लिए आसन प्रदान करते हैं और उनका गुणगान करते हैं। तो सारे लोग वहां पर चर्चा होती है, अरे हरिदास आए, हरिदास आए हैं, 300,000 नाम किया करते थे, वैश्या का भी उन्होंने उद्धार किया हुआ है, उससे ख्याति उनकी फैल गई थी और इतना वो नाम लेते हैं, उनकी ख्याति है, सुप्रसिद्ध है। तो सारे लोगों के बीच में अभी चर्चा चलने लगी, केहो बले नाम है ते होय पाप क्षय, केहो बले नाम है ते जीवेर मोक्ष है। कुछ लोग कह रहे थे कि जब कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका पाप क्षीण हो जाता है और कुछ लोग कह रहे थे यदि कोई भगवान का नाम लेता है तो उसे मोक्ष मिल जाता है। लेकिन हरिदास ठाकुर कहने लगे, आप क्या व्यर्थ चर्चा कर रहे हो। हरिदास कहे ना मेरे ए दुई फल नए, ना मेरे फले कृष्ण पदे प्रेम उपजय। ये मुक्ति और पापों का क्षीण हो जाना ये दो तो हरिनाम के फल नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति ये हरिनाम का वास्तविक फल है। ये मुक्ति और पाप नाश ये तो गौण फल है और वो तो नामाभास से ऐसे ही मिल जाते हैं। और उदाहरण देते हैं, मानो सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय होने से पहले ही उसकी आभा से ही अंधेरा दूर हो जाता है और सारे चोर लफंगे दुष्कृति करने वाले लोग उनसे भय जो है वो उनका भय चला जाता है क्योंकि उजाला हो जाता है तो कोई काम नहीं कर सकता इस प्रकार से बुरे। और ये तो केवल नामाभास से ही ये सब जो है वो मिल सकता है और वही श्रीमद् भागवत का छठे स्कंद का श्लोक हरिनाम उद्रुक्त करते है, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगाधाम किमुत श्रद्धया गृणन। तो वो कहते हैं कि मरते समय इसने नाम लिया अजामिल ने और वो भी अपने पुत्र को उसने पुकारा और वो भी भगवान के धाम जा सकता है, तो जो श्रद्धा पूर्वक नाम लेगा तो उसकी बारे में क्या कहना। इस प्रकार से ऐसा बताते हैं और वो कहते हैं कि भक्त तो मुक्ति की अभिलाषा बिल्कुल नहीं रखता है। और कपिल देव जो अपनी माताओं को शिक्षा दिए श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में उसका वर्णन करते हैं, सालोक्य सारि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानम न गृहणन्ति विना मत सेवनम जना। यदि मेरे सेवा किसी को प्राप्त नहीं होती है तो ये भक्त जो है वो चारों प्रकार की मुक्ति की भी अभिलाषा नहीं रखते। सालोक्य सारि सामीप्य और सारूप्य कौन सी है ये मुक्तियां, वास्तव में पांच मुक्तियों का वर्णन आता है। एक भक्त ने प्रश्न पूछा था, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन नहीं किया है क्योंकि ये भागवत के बाद पढ़ते हैं, तो भागवत में इन पांचों मुक्तियों का वर्णन है। तो सबसे पहला है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति है कि वो मुक्ति जो इम्पर्सनल ब्राह्मण लिबरेशन जिसे कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, यह है सायुज्य मुक्ति। तो ये तो कोई चाहता ही नहीं है। और जो चार मुक्ति है खास करके इन चारों मुक्तियों की गणना की जाती है, पांच नहीं बोलते क्योंकि यह सायुज्य तो कोई चाहता ही नहीं है, केवल मायावादी लोग इसे चाहते हैं। तो बाकी चार मुक्तियों में से कोई मुक्ति मतलब इसको मुक्ति माना जा सकता है। सालोक्य मतलब भगवान के लोक में वो उस व्यक्ति का चला जाना, उसे कहते हैं सालोक्य मुक्ति। सारूप्य मतलब भगवान जैसा रूप प्राप्त करने, सामीप्य का अर्थ है भगवान के समीप रहने का सौभाग्य प्राप्त होना और सारष्टि का अर्थ है कि भगवान के जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। तो सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युतो दीयमानम् न गृह्णन्ति विना मत सेवनम् जना। यदि मेरे भक्तों को मेरे सेवा के बिना ये चार मुक्तियां भी मिल जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा हरिदास ठाकुर यहाँ पर अपना मत प्रस्तुत किए। उसी समय वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। ये जो गोपाल चक्रवर्ती था, ये जो मुजुमदार थे, हिरण्य मुजुमदार और गोवर्धन मुजुमदार, इनके यहां पे एक प्रमुख कर संग्राहक के रूप में काम किया करता था, नौकरी पे था उनके यहां पे। तो हर महीने जो 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो है वो शाही खजाने में जमा करना, ये उसका कारोबार था। 12 लाख स्वर्ण मुद्राएं शाही खजाने में जमा करना हर महीने की। तो देखिए आमदनी कितनी होगी, इतना तो कर जमा करते थे वो, इतना तो टैक्स था। तो ये जो था उसे ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई जो हरिदास ठाकुर कह रहे थे, और वो सहन नहीं कर पाया और क्रोध जताने लगा हरिदास ठाकुर के प्रति, और सारी सभा में हरिदास ठाकुर की निंदा करने लगा और कहा कि ये हरिदास ठाकुर ये भावुक व्यक्ति बोल रहा है और आप सारे विद्वान लोग इसे सुन रहे हैं, छे छे छे, बिल्कुल बुरी बात है। कोटि जन्म ब्रह्म ज्ञाने यही मुक्ति न, यही कहे नामा भाषे से ही मुक्ति हो। कहते कि कोटि जन्म यदि कोई प्राप्त कर ले ब्रह्म ज्ञान होने के बाद भी मुक्ति नहीं सुलभ, और ये कहते हैं कि नामा भास ले लो और ऐसे ही मुक्ति मिल जाएगी, कुछ भी। हरिदास ठाकुर कहते हैं बालक संचय मत करो, मैं जो भी बोल रहा हूं वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित है। और ये क्रुद्ध होकर हरिदास ठाकुर से कहता है गोपाल चक्रवर्ती, विप्र कहे नामा भासे यदि मुक्ति न है तबे तुम्हार नाक काटी करिह निश्चय। यदि नामा भास से मुक्ति नहीं होती है तो मैं आपका नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर कहते हैं ठीक है, यदि नामाभास से मुक्ति नहीं होती है तो मैं भी अपना नाक कटवाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं शास्त्रों के आधार पर बोल रहा हूं और मुक्ति जो है वो भक्ति से हमेशा निम्न दर्जा की मानी जाती है और भक्त तो मुक्ति कभी चाहते ही नहीं है। तो सारे जो विद्वत सभा वहां पर बैठी थी उनमें कोलाहल मच जाता है कि ये गोपाल चक्रवर्ती अपराध कर रहे आप हरिदास ठाकुर जी का। और फिर तुरंत वहां पर हिरण्य मुजुमदार गोवर्धन मुजुमदार उसे डांटने लगते हैं, और जो बलराम आचार्य है वो भी डांटने लगते हैं कि तर्कवादी है तू, इस प्रकार से भक्ति के बारे में तुझे जानकारी नहीं है, हरिदास ठाकुर का अपराध करेगा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, इस प्रकार से सब लोग बोलने लगते हैं। और मुजुमदार ने तो उस व्यक्ति को अपने नौकरी से ही निकाल दिया उसी समय उसी वक्त वहां पर, और सारे लोग हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ते हैं, कहते हैं क्षमा करना आपके प्रति अपराध कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता था यदि अपराध हो जाएगा महान व्यक्ति का आयुष्यम यशो धर्मम लोकान आशीष एवच हंति शयांसी सर्वाणी पुंसो महत अतिक्रम। महान व्यक्ति का यदि अपराध होता है तो ये सब कुछ जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वो सब हरिदास ठाकुर के क्षमा मांगते हैं। हरिदास ठाकुर कहते हैं कि देखो आप चिंता मत करो, मैं इस व्यक्ति का अपराध नहीं ले रहा हूं, ये केवल ये आपका भी दोष नहीं है और ये गोपाल चक्रवर्ती का भी दोष नहीं है, केवल बात क्या है कि ये तर्क और शुष्क चिंतक है ये, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा बोल के हरिदास ठाकुर वहां से चले जाते हैं, सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और गोपाल चक्रवर्ती को सब लोग निष्कासित कर देते हैं। हो क्या जाता है गोपाल चक्रवर्ती के साथ, तीन दिन भीतरे से ही विप्रेर कुष्ठ हैला अति उच्च नासा तार गलिया पड़ीला। वह सुंदर था, ब्राह्मण था और ऊंचा 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 उसका नाक था, तीन दिन के अंदर उसे कुष्ठ रोग हो जाता है और जो उसका ऊंचा नाक था वही गलित होकर गिर जाता है। वो हरिदास ठाकुर का नाक काटने वाला है, उसी का नाक कुष्ठ रोग से कट नहीं जाता, अभी गिल जाता है, गिला हो जाता है, कुष्ठ रोग से गल जाता है। तो जब गल जाता है और उसकी सुंदर अंगुलियां थी, हाथ की पैर की अंगुलियां, वो भी सारी गल जाती है कुष्ठ रोग के कारण और बिल्कुल कुरूप हो जाता है। सारे लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि हरिदास के महिमा देखो, ये गोपाल को जो है वो इस प्रकार से कुष्ठ रोग हो गया। हरिदास ठाकुर ने तो उनका अपराध नहीं लिया था अपने सर के ऊपर, लेकिन भगवान उस व्यक्ति को क्षमा नहीं करते जो भगवान के भक्तों का ऐसे अपराध करता है। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा करे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सोहिते ना पारे। भक्त का तो स्वभाव ही है कि वो अन्य लोगों का अपराध नहीं मानते हैं और उन्हें क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान कभी भी अपनी भक्त निंदा सोहिते ना पारे, अपने भक्त की निंदा कभी भी वो सहन नहीं करते हैं। हरिदास ठाकुर को जैसे ही पता चला कि गोपाल चक्रवर्ती को इस प्रकार से कुष्ठ रोग हो जाता है, वो मन में अत्यंत दुखी हो जाते हैं। यह वैष्णव वो अत्यंत दुखी हो जाते हैं और बलराम आचार्य से कहते हैं कि अभी मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा, और वहां से वो शांतिपुर चले जाते हैं, और शांतिपुर में वो अद्वैत आचार्य इनके यहां पर चले जाते हैं। तो दूसरा वृत्तांत हो गया गोपाल चक्रवर्ती वाला, और अभी कविराज गोस्वामी तीसरा वृत्तांत यहाँ पर सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। तीसरे वृत्तांत में भी दो भाग है। तो पहले भाग में अद्वैताचार्य और उनके साथ आदान प्रदान हरिदास ठाकुर इनका। तो अद्वैताचार्य इन्होंने गंगा नदी के तट पर हरिदास ठाकुर के लिए एक बहुत सुंदर गुफा बना दी, और उस गुफा में वो निरंतर कृष्ण नाम का कीर्तन किया करते थे, 3 लाख नाम जप किया करते थे। और प्रसाद आदि कुछ लेना था तो वो अद्वैताचार्य के घर पर आया करते थे और प्रसाद पाया करते थे, और कृष्ण कथा दोनों भक्त मिलकर एकत्रित रूप से किया करते थे। और हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य नित्य रूप से प्रसाद भी दिया करते थे। लेकिन हरिदास ठाकुर को कभी कभी संकोच होता था कि इतने सारे, ये अद्वैताचार्य तो सबसे पहले इतने बड़े महान ब्राह्मण वैष्णव है, और बाकी सारे यहाँ पर इतने सारे विद्वत लोग रहते हैं, और मुझ जैसे एक शूद्र लोग, शूद्र जीव को ये प्रसाद के लिए बुलाते हैं। महा महा विप्र एथा कुलीन समाज, नीचे आदर करना वासह भयलाज। हरिदास ठाकुर अद्वैताचार्य से एक दिन कहते हैं कि इतना कुलीन समाज में आप रहते हैं, क्या आपको कोई भय या लज्जा नहीं लगती? मेरे जैसे नीच व्यक्ति का आप सम्मान करते हैं और प्रसाद खिलाते हैं। अद्वैताचार्य कहते कि आप भय बिल्कुल मत करो, ये शास्त्र सम्मत आचरण है मेरा। शास्त्र प्रमाणित करते हैं कि ब्राह्मण को भोजन देना उससे भी श्रेष्ठ है किसी वैष्णव को संतुष्ट करना। और एक 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 दिन की बात है, ये लीला विस्तार से वृंदावनदास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में कही है, कविराज गोस्वामी केवल एक पंक्ति में इसे बता देते हैं। तुम्ही खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। आपने यदि खाया तो कोटि ब्राह्मणों को खिलाने के समान है, इसलिए मैं आपको खिला रहा हूं, और श्राद्ध का पात्र हरिदास ठाकुर को खिला देते हैं अद्वैत आचार्य। तो वृत्तांत मैं आपको छोटा सा बता देता हूं जो चैतन्य भागवत में वर्णित है। तो एक दिन की बात है, अद्वैताचार्य अपने यहाँ पे श्राद्ध का भोजन रखवाए थे और कई सारे ब्राह्मणों को बुलाए थे श्राद्ध के भोजन के लिए, और वहां पर हरिदास ठाकुर को भी बुलाए थे। और जो श्राद्ध पात्र मतलब जो पहला मानकरी व्यक्ति था, तो अद्वैताचार्य पहला मान हरिदास ठाकुर जी को प्रदान करते हैं, तो सारे ब्राह्मण वहां पर अचंभित हो जाते हैं और वो कहते कि आप क्या कर रहे हैं। तो अद्वैताचार्य कहते मैं इन्हें पहले खिलाऊंगा और इनके बाद आपको जो है वो भोजन प्राप्त होगा। वो सब लोग कहते हैं यदि एक तो ये खाएंगे, नहीं तो हमें देना होगा, नहीं तो हम चले। अद्वैताचार्य कहते हैं ठीक है, आपको जाना है तो आप जाइए, लेकिन मैं इस परम वैष्णव को ही श्राद्ध का पात्र पहले खिलाऊंगा। सारे ब्राह्मण वहां से उठ के चले जाते हैं। हरिदास ठाकुर वहां पे चिंतित होकर अद्वैताचार्य से चिंता व्यक्त करते कि आपने क्या किया, आपने अच्छा नहीं किया, उन्हें देना चाहिए था। अद्वैताचार्य कहते कि मैंने जो भी किया है वो शास्त्र से शास्त्र की सम्मति में ही किया है, इसलिए कुछ अपराध नहीं है। और पहला श्राद्ध पात्र हरिदास ठाकुर को ही दिया जाता है, हरिदास ठाकुर उसे ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ दिन पश्चात वहां पर उस गांव में अकाल पड़ता है, और अकाल पड़ने के बाद सारा गांव सूखा और भूखा रहने लगता है। लेकिन अद्वैताचार्य अकेले थे जिनके घर पे भंडारा चलता था, और वही ब्राह्मण जो जिन्होंने अपराध किया था पहले, वो अभी आके अद्वैताचार्य के घर पे प्रसाद पाया करते थे, खाया करते थे, और उन्होंने भी हरिदास ठाकुर का फिर उसके बाद आगे चल के सम्मान किया था। तो ये छोटा सा वृत्तांत वहां पर वर्णन करते हैं। कविराज गोस्वामी ने केवल उसे स्पर्श किया है, तुम्ही खाइले हय कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइला भोजन। और हमें पता है ये दो भक्त कितने महान है, शांतिपुर में जो बैठे थे अद्वैताचार्य, जो नित्य रूप से तुलसी और गंगा जल इनसे उन्होंने भगवान की पूजा की, और भगवान चैतन्य महाप्रभु को आविर्भाव के लिए उनकी हुंकार ये एक प्रमुख कारण था। और दूसरा हरिदास ठाकुर जो बद्ध जीवों की चिंता करके हरिनाम संकीर्तन किया करते थे, उनके कारण, इन दोनों के कारण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए इस धरातल पर। दुई जनेर भक्ते चैतन्य कैला अवतार, नाम प्रेम प्रचारी कैला जगत उद्धार। इन दो भक्तों के कारण ही वास्तव में चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर प्रकट हुए हैं, और सारे जगत में प्रेम का प्रचार करके उन्होंने इस जगत का उद्धार किया हुआ है। यह वृत्तांत सुनाने के पश्चात कविराज गोस्वामी कहते हैं, आर अलौकिक एक चरित्र तहार, यहार श्रवणे लोक होय चमत्कार। और एक हरिदास ठाकुर का एक वृत्तांत है जिसे सुनेंगे तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। क्या आप सुनना चाहेंगे? ऐसा कविराज गोस्वामी कहते हैं, और कहते हैं कि आप श्रद्धा से सुनो, वो जो गुफा अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए बनाई थी, उस गुफा में कई सारे लीलाएं घटी और उन सारे लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर इन्होंने अपने चैतन्य भागवत इस ग्रंथ में विस्तार से किया हुआ है। एक लीला शेष बच जाती है, कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं उस लीला का वर्णन करूंगा। एक दिन की बात है, हरिदास ठाकुर अपनी गुफा में नाम का कीर्तन करते हुए बैठे थे और पूर्णिमा की रात थी, चंद्रमा की शीतल प्रकाश वहां पर पहुंच रही थी, गंगा नदी की सुंदर तरंगे वहां पर बह रही थी, शीतल हवा वहां से चल रही थी, रात्रि का समय था, वन था और हरिदास ठाकुर अकेले वहां पर कीर्तन करने में मग्न थे। और अचानक क्या हो जाता है, हेन काले एक नारी अंगने आईल, तार अंग कांते स्थान पीतवर्ण हईल। एक बहुत ही दैवी लगने वाली एक नारी वहां पर आ जाती है उस अंगन में, और उसकी अंग कांति इतनी थी कि उसकी प्रभा से क्या हो गया, स्थान पीतवर्ण हईल, मानो मानो जैसे सूर्य का उदय होता है तो सारी उसकी जो प्रभा है वो प्रभा फैल जाती है और उस प्रभा से मानो सारा वातावरण का रंग परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से ये दिव्य नारी वहां पर उपस्थित हो गई और उसकी अंग कांति से ही सारा जगह जो है वो पीत वर्ण से प्रभावित हो गया। तार अंग गंधे दश दिक आमोदित, भूषण ध्वनिते कर्ण हय चमकित। उसकी अंग की कांति इतनी थी कि और उसका अंग का जो गंध था, उस गंध की जो महक थी वो दसों दिशाओं में फैल रही थी। आज की कौन सी भी साबुन उससे तुलना नहीं की जा सकती, आप कितना भी साबुन लगा दो उसकी तुलना से कई सैकड़ों हजारों लाखों गुना अधिक जो है वो सुगंध उसके शरीर से आ रही थी और दसों दिशाओं को वो फैला रही थी। और जो आभूषण वो पहनी हुई थी, उन आभूषणों की झंकार मानो कर्णों के लिए अमृत की वर्षा समान हो। और वो आती है और उसने भी वही गलती की, वो आती है तुलसी को प्रणाम करती है, हरिदास ठाकुर को प्रणाम करके उस गुफा के दहली पर बैठ जाती है और मधुर स्वर में वो हरिदास ठाकुर से बात करना प्रारंभ करती है। जगतेर बंद तुमी रूप गुणवान, तव संग लागी मोर एथा के प्रयाण। आप सारे जगत के बंधु हैं हरिदास जी, और आपका रूप देखिए, क्या आपके रूप का मैं गुणगान करूं, आप इतने रूपवान हैं, गुणवान हैं और आपका संग की अभिलाषा रख के मैं इस स्थान में आई हूं। और साधु लोगों का स्वभाव होता है वो दीन दुखियारों के प्रति अपनी कृपा दर्शाते हैं, मैं भी इसी दीन अवस्था में आई हूं, कृपया आप मेरा अंगीकार कीजिए। एत बलि नाना भाव कर ये प्रकाश, यहार दर्शने मुनिर हय धैर्य नाश। इस प्रकार से अपनी मुद्राएं करने लगी, अपने शरीर के अन्योन्य भाव प्रकट करने लगी और अपनी भंगिमाओं से मानो कई सारे मुनियों के धैर्य को भी वो जीत ले और उनके व्रत को भंग कर दे। इस प्रकार से अलग अलग भंगिमाएं वहां पर प्रदर्शित करने लगी। हरिदास ठाकुर बिल्कुल अविचलित निर्विकार अवस्था में वहां पर थे, बिल्कुल उनका चित्त विचलित नहीं होता है और भगवान के नाम में वो निमग्न। वो इस वेश्या से कहते हैं, संख्या नाम संकीर्तन यही महायज्ञ मन्ये तहाते दीक्षित आमी होई प्रतिदिने। मैंने ये दीक्षा ली हुई है और मैंने संकल्प लिया है कि ये जो मेरे कुछ संख्या है वो नाम प्रतिदिन मैं ये महायज्ञ करता हूं और ये जब तक पूरा नहीं होता तब तक मैं कुछ कार्य नहीं करता हूं। यावत कीर्तन समाप्त न है न करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त होइले होय दीक्षार विश्राम। जब तक मेरा कीर्तन समाप्त नहीं होता है तब तक मैं अन्य किसी चीज को स्पर्श भी नहीं करता हूं। देखिए हरिदास ठाकुर कितना महान व्रत लिए हुए हैं, यहां पर तो इतने सारे प्रलोभन वहां पर आ रहे थे, हमारे सामने भी किसी प्रकार से अन्योन्य प्रलोभन उपस्थित हो जाते हैं और सबसे बड़ा प्रलोभन कभी कभी हमारा भ्रमण ध्वनि या मोबाइल भी हो जाता है। हरिदास ठाकुर ने व्रत लिया था, यावत कीर्तन समाप्त न है ना कोरी अन्य काम, दूसरा काम मैं नहीं करता हूं जब तक मेरा ये व्रत समाप्त नहीं हो जाता। उसी प्रकार से एक भक्त को चाहिए कि जब तक हमारे जितनी मालाओं का व्रत है वो मालाएं पूरी नहीं हो जाए तब तक हम कम से कम जो है वो दुनिया से संपर्क न बनाए और अन्योन्य कार्यों में न लगे और कम से कम मोबाइल तो न उठाए। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हाल ही में जब प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि 10 नामापराध तो हमें पता है नाम के प्रति अपराध। वो कहे कि आज के युग में 11वां अपराध जोड़ना होगा कि एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में मोबाइल लेके बैठना, ये एक जो है वो 11वां अपराध मानना चाहिए आज के कलयुग में। तो इस प्रकार से जो है वो हरिदास ठाकुर अपने स्वयं की रक्षा कर पाए ऐसा व्रत उन्होंने लिया था। वही व्रत यदि हम भी ले कि हमारी भी संख्या पूर्वक नाम जब तक नहीं हो जाते अन्योन्य कार्यों में हम नहीं लगेंगे, ये हरिदास ठाकुर यहाँ पर जो है वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। हरिदास ठाकुर उस वेश्या को कहते हैं कि जब तक मेरा कीर्तन समाप्त नहीं हो जाता मैं दूसरा कार्य नहीं करता हूँ, और जब यह समाप्त हो जाएगा तभी मैं दूसरे कार्यों को हाथ लगाता हूँ। तब तक आप क्या कीजिए, यहाँ पर बैठ जाइए और आपको भी करने के लिए कुछ काम यहाँ पर है नहीं, आप भी जो है वो मेरा कीर्तन जो है वो सुनिए। एत बलि करेंते हो नाम संकीर्तन सेई नारी वसी करे श्री नाम श्रवण। नारी वहां पर बैठ जाती है और नाम का श्रवण करते लेती है और इनका कीर्तन तो दिन रात चलता ही रहता है। प्रातः काल हो जाती है, उठकर नारी वहां से चली जाती है और जैसे उन्होंने वेश्या का उद्धार किया था उसी प्रकार से तीसरी रात को वो नारी वहां पर पुनः सुशोभित होकर आ जाती है और हरिदास ठाकुर को माने क्रोध जताते हुए कहती है कि हे हरिदास, आपने मुझे झूठा आश्वासन दिया था लेकिन या आप जो है वो आप रात दिन आपका नाम जो है वो समाप्ति नहीं हो रहा है। हरिदास ठाकुर कहें आमी की करीमू, मैं क्या करूं, नियम करियाची तहां के मने छाड़ीमू, मैंने तो नियम लिया हुआ है उस नियम को मैं कैसे छोड़ू, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करे। तब वो नारी हरिदास ठाकुर को झुककर प्रणाम करती है। तबे नारी कहे तारे करी नमस्कार आमी माया करीते आईला परीक्षा तोमार। वो भी अपना असली रूप बता रही है कि मैं साक्षात माया हूँ और आपकी परीक्षा करने के लिए यहाँ पे उपस्थित थी। हरिदास ब्रह्मादि जीव आमी सबारे मोहिलू एकले तोमार आमी मोहिते नारी लू। ब्रह्मा से लेकर के सारे जीवों तक अभी तक मैंने मोहित किया था, सारा विश्व मेरे से मोहित हो जाता है लेकिन आप अकेले व्यक्ति हो जिसको मैं मोहित नहीं कर पा रही हूँ। आप महाभागवत है और आप जो है आपके केवल दर्शन से आपसे नाम सुनकर जो है वो मेरा चित्त शुद्ध हो गया है, आप कृपया मुझे कुछ उपदेश दीजिए। चैतन्य महाप्रभु जो इस धरातल पर अवतरित हुए हैं, भगवत प्रेम रूपी अमृत की बाढ़ बह रही है और सारी पृथ्वी धन्य हो रही है। अभागा वो जीव होगा जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम की वर्षा की बाढ़ लाए है उससे अपने आप को वंचित रख रहा है। ऐसे व्यक्ति का जो महाप्रभु का जो उपदेश है उनका स्वीकार नहीं कर लेता, करोड़ों कल्पों तक उसका उद्धार का नामो निशान भी नहीं है। पहले मैंने राम नाम में शिवजी से दीक्षा ली है, आज मैं कृष्ण नाम से आपसे दीक्षा लेने के लिए लालाहित हूँ। कृष्ण नाम देह तुम्हें मोरे कर धन्या, हमारे भाषा ये छे यही प्रेम वन्या। आप जो है वो कृष्ण नाम की दीक्षा मुझे दे दीजिए और अपना मुझे शिष्य बना लीजिए और मुझे धन्य कर दीजिए और जो चैतन्य महाप्रभु की प्रेम की जो बाढ़ आई है उसमें मुझे भी बह जाने के लिए एक सु अवसर प्रदान कर दीजिए। हरिदास ठाकुर के चरणों में वंदन करती है वो माया देवी और हरिदास ठाकुर उपदेश देते हैं वही नित्य कीर्तन करते रहो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा और उसे दीक्षा दे देते है। माया इस प्रकार से प्रसन्न होकर वहां से चली जाती है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर में इतनी शक्ति थी, इतना प्रभाव था कि केवल उनका नाम सुनकर ही जो शुद्ध नाम लिया करते थे उनकी ध्वनि से उन्होंने वैश्या का उद्धार किया, उनकी ध्वनि से उन्होंने जो है वो माया देवी को भी उन्होंने साक्षात उद्धार किया और उसको दीक्षा दिया। वही शुद्ध भक्तों की संगति आज हमारे लिए भी उपलब्ध है। श्रील प्रभुपाद जी की वाणी, उनके कई सारे शुद्ध भक्त उनके शिष्य उनकी वाणी और श्रील प्रभुपाद जी का खास करके जो जप ध्वनि है यदि हम लोग उसे भी सुनते हैं तो हम जैसे बद्ध जीवों का भी उद्धार अवश्य हो सकता है। कविराज गोस्वामी कहते हैं ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसे लीलाओं के ऊपर कभी विश्वास नहीं रखते, लेकिन कविराज गोस्वामी कहते हैं कि इनको यदि कोई पढ़ता है तो उसका विश्वास जरूर बढ़ेगा। ब्रह्मा नारद शिवजी प्रहलाद ये सब जो है वो मनुष्य रूप लेके चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित हुए और इनको तो छोड़ो, अन्य का कथा आपने व्रजेंद्र नंदन अवतरी करें प्रेम रस आस्वादन। स्वयं कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए इस धरातल पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। बाकी लोगों को तो छोड़ दो, मायादासी प्रेम मागे इथे की विस्मय, साधु कृपा नाम विना प्रेमना जन्मय। माया देवी यहाँ पर नाम की भीख मांग रही थी हरिदास ठाकुर से, इसमें आश्चर्य करने वाली क्या बात है। और दो बहुत गुड रहस्य कविराज गोस्वामी प्रकट करते हैं, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्मय। साधु की कृपा यदि आपके ऊपर नहीं है और नाम का आश्रय आपने नहीं लिया हुआ है तो प्रेम कभी भी आपके हृदय में जन्म नहीं लेगा, जो कि कृष्ण प्रेम जो है वो फल है और प्रयोजन के रूप में हमारे सामने उपस्थित है, वो कभी हमें नहीं प्राप्त होगा। और इसलिए ये चैतन्य महाप्रभु की आज्ञाओं से भी सुसंगत हम लोग देख सकते हैं। जब कुलीन ग्रामवासी महाप्रभु से पूछे थे कि हमें क्या करना चाहिए, उस समय महाप्रभु ने यही दो उपदेश दिए थे। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। वैष्णव सेवा करो और नाम संकीर्तन करो, ये दो करोगे तो कृष्ण प्रेम जरूर प्राप्त हो जाएगा। और कविराज गोस्वामी भी वही कह रहे हैं, साधु कृपा नाम विना प्रेम ना जन्मय। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि आपको श्रद्धा करनी ही होगी, क्योंकि ये मन गढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं। स्वरूप दामोदर इनका कड़चा, उनकी डायरी, और जो रघुनाथ दास गोस्वामी जो महाप्रभु के संग जगन्नाथपुरी में उन्हें मिला था, उनसे जो मैं वृंदावन में सुना हूं राधा कुंड के तट पर, वो सब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ संक्षेप में। केवल हरिदास ठाकुरेर कहिलो महिमा र कण, याहार श्रवण भक्तेर जुड़ाय श्रवण। हरिदास ठाकुर की महिमा का सागर तो अपार है, लेकिन उसका एक कण मात्र मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिसको श्रवण करने से सारे भक्तों के कर्ण और मन जो है वो तृप्त हो सकते हैं। और ऐसा कह के वह इस अध्याय का अंत करते हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। तो इस प्रकार से यह अध्याय हमारा समाप्त होता है, जिसमें हरिदास ठाकुर की महिमा हमने भूरी भूरी मात्रा में जो है वो सुनी है। हमारा अगला चौथा अध्याय होगा चैतन्य महाप्रभु, इनका सनातन गोस्वामी से मिलन। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को आज्ञा दी थी इस पहले अध्याय में अंतलीला के, कि रूप आप तो जब जाएंगे गौड़ तब आपके भाई सनातन को कहना मुझे आने के लिए मिलना। सनातन गोस्वामी हमारे संप्रदाय के संबंध आचार्य है, और किस प्रकार से वो पुरी में रहे, उनका जीवन भी चरित्र भी जो है वो इस प्रकार से कई सारी शिक्षाओं से भरा हुआ है, और कितनी नम्रता से वो पुरी में रहे और महाप्रभु ने अपनी कृपा किस प्रकार से सनातन गोस्वामी के ऊपर की, इसे यदि आप सुनना चाहते हैं तो बने रहिए। हम मिलेंगे कल ठीक शाम को 5:30 बजे। अभी एक अनाउंसमेंट है, जो मॉक टेस्ट, जो भी भक्त चैतन्य चरितामृत इस ग्रंथ की सीसीसी कॉन्टेस्ट में भाग लिए हुए हैं, उनके लिए यह सूचना है कि आने वाले रविवार को यानी 26 तारीख को जो है वो ये शाम को 4 से 4:20 तक ये मॉक टेस्ट आप समझ गए होंगे एक रखी गई है, 4 बजे शाम को शुरू हो जाएगी, 4:20 को ये अंत हो जाएगी। और आपको ग्रुप में ये भेजा गया है लिंक, आप अभी क्लिक करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं उसमें, ये सक्रिय हो जाएगी ठीक शाम को 4 बजे 26 तारीख को रविवार को। और वो वहां से क्या कहते हैं लुप्त हो जाएगी 4:20 बजे। तो आपको प्रश्न दिए जाएंगे, इस मॉक टेस्ट में 20 प्रश्न आने वाले हैं, और आपको सबसे पहले ठीक से जो ऊपर सूचनाएं दी गई है उसे आपको ठीक से पढ़ना है, और ठीक से पढ़ने के बाद सारे सवालों के जवाब देने हैं। प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी में भी रहेंगे, दोनों बगल बगल में रहेंगे, और उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में साथ साथ दिए गए रहेंगे। तो जो सबसे सही जवाब है उसके ऊपर आपको केवल क्लिक करना है तो वो क्लिक हो जाएगा, और ऐसे सारे प्रश्न कंपलसरी है, सारे प्रश्नों को जवाब देना अनिवार्य है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं किया जाएगा। और 4:20 से जितना पहला हो सके, आप सबसे नीचे जो है वो सबमिट बटन है, वो बटन आपको दबाना है, जिससे जो है वो आपका आंसर पेपर सबमिट हो जाएगा। और सारे भक्तों को आपने यदि ईमेल दिया हुआ है, ईमेल देना भी अनिवार्य है, किसी का आपका ईमेल नहीं है तो किसी भक्त का अन्य आप ईमेल जरूर आप रखिए, क्योंकि आपको आपका जो रिजल्ट है, इसका जो परिणाम है, वो आपके ईमेल में ही आने वाला है। तुरंत आपके मार्क्स आपको ईमेल करके भेज दिए जाएंगे, और आपको यदि 50% से अधिक मार्क यदि आपको मिल जाते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, उस सर्टिफिकेट में भी आपके मार्क अंकित किए रहेंगे। तो ये मॉक टेस्ट है, ये हम भी जो हमारी सारी यंत्रणा लगाए हैं वो यंत्रणा किस प्रकार से कार्य कर रही है, ताकि हमारी जो फाइनल एग्जाम आने वाली है 3 मई को, उस समय क्या होगा हालचल, उसकी भी मॉक टेस्ट जो है वो इसके लिए हम लोग रख रहे हैं। समय है हमारे आज के प्रश्न का। प्रश्न पूछा गया था कि 17वें अध्याय का प्रश्न है, महाप्रभु ने एक दिन, महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के यहाँ पे कई सारे लीलाएं किया करते थे। सवाल का जवाब एक श्लोक में आपको मिल जाएगा। एक दिन प्रभु श्रीवास सेरे आज्ञा दिला, बृहत सहस्त्र नाम पढ़ शूनिते मन हैला। महाप्रभु ने आज्ञा दी थी, किसे आज्ञा दी थी, ये प्रश्न पूछा गया था। तो महाप्रभु ने जो आज्ञा दी थी वो श्रीवास ठाकुर इन्हें दी थी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप अच्छे से अपना अध्ययन जारी रखिए, पढ़ते रहिए चैतन्य चरितामृत, और मॉक टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, और उसके पश्चात भी आपको कुछ दिन मिलेंगे, उसमें आप जो है वो और अच्छे से रिविजन करेंगे तो आपको सही मात्रा में जो है वो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।